तीसरा अध्याय जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। भूतल पर जनसंख्या के वितरण में आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक परिवर्तन होता रहा है, यद्यपि परिवर्तन की गति एवं दिशा देश काल के अनुसार भिन्न भिन्न रही है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक विषम है, जहां एक ओर मानव निवास के लिए उपयुक्त स्थल खंडों पर जनसंख्या का अत्यधिक जमाव हो गया है, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी के बड़े बड़े भूखंड मनुष्यों के लिए अनुपयुक्त होने के कारण पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से निर्जन तथा वीरान पड़े हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व के कुल जनसंख्या का लगभग 90% इसके मात्र 10% स्थलीय भाग पर संकेंद्रित है, जबकि इसके विपरीत 90% भूभाग पर केवल 10% जनसंख्या ही निवास करती है। इस प्रकार विश्व की लगभग आधी जनसंख्या संपूर्ण स्थलीय क्षेत्र के मात्र 5% पर ही रहती है। वाइडल डी ला ब्लांस के मतानुसार विश्व के 2/3 जनसंख्या, उसके 1/7 भाग लगभग 15% क्षेत्र पर केंद्रित है। महाद्वीप वितरण के अनुसार एशिया में संसार की लगभग 2/3 जनसंख्या का निवास है, जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप तथा ग्रीनलैंड के हिमाच्छादित भाग आज भी जनविहीन है। धरातल पर जनसंख्या के असमान वितरण के लिए अनेक प्राकृतिक तथा मानवीय कारक उत्तरदायी हैं, जिसका विवरण आगे दिया गया है। भूतल पर मनुष्य कहाँ और कितनी संख्या में पाए जाते हैं, इसका विवरण जनसंख्या वितरण के विश्लेषण द्वारा प्रकट होता है। पृथ्वी के विभिन्न भागों पर मानव के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का विश्लेषण करना भौगोलिक अध्ययन का मूल तत्व है। फिंच एंड ट्यूवाथा के अनुसार जनसंख्या ही वह संदर्भ बिंदु है जिसके कारण भूगोलवेत्ता अन्य पर्यावरणीय तंत्रों का अध्ययन करता है, जिसका महत्व तथा अर्थ मानव के संदर्भ में ही निहित है। संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग के कुल क्षेत्रफल और मनुष्यों की संख्या के अनुपातिक संबंध को जनसंख्या घनत्व डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन द्वारा व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व द्वारा यह प्रकट होता है कि भूतल के किसी भाग में जनसंख्या का जमाव अधिक है और कहाँ कम, अर्थात कहाँ पर जनसंख्या घने रूप में बसी हुई है और कहाँ उसका बसाव बिखरा हुआ है। यही कारण है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण और घनत्व में इतनी अधिक साम्यता और सहगम्यता पाई जाती है कि एक की व्याख्या के लिए दूसरे का ज्ञान परम आवश्यक है। इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर जनसंख्या अधिक होती है वहां पर जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है, और जहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है वहां जनसंख्या का घनत्व भी कम पाया जाता है। अतः कभी कभी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। यही कारण है कि जो भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण के लिए उत्तरदायी होते हैं वही कारक जनसंख्या घनत्व के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। अतः अगले पृष्ठों पर जनसंख्या वितरण तथा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या संयुक्त रूप से की गई है। जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नियतवादी विचारकों के मतानुसार भूतल पर जनसंख्या के वितरण को प्राकृतिक कारक ही निर्धारित करते हैं, जबकि संभववादी भूगोलवेत्ताओं के अनुसार इस पर मानवीय कारकों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। वास्तविकता यह है कि धरातल के किसी भाग में जनसंख्या का अधिक या सघन रूप में पाया जाना अथवा अल्प जनसंख्या या कम सघनता का मिलना विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों के समुच्चित प्रभाव का परिणाम होता है। जनसंख्या के वितरण पर कोई एक कारक अधिक प्रभावशाली हो सकता है, किंतु उस पर अन्य कारकों का भी उल्लेखनीय प्रभाव पाया जाता है। अतः जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर जनसंख्या पारिस्थितिकी रूप में विचार करना उचित है। जनसंख्या तथा उसके घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले समस्त भौगोलिक कारकों को दो प्रधान वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट प्राकृतिक कारक एंड सेकेंड वन मानवीय कारक। ए प्राकृतिक कारक, फिजिकल फैक्टर्स। जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में जलवायु, भूविन्यास, मिट्टी एवं खनिज, जलापूर्ति जलाशय, प्राकृतिक वनस्पति तथा जीव जंतु प्रमुख हैं। पहला, जलवायु, क्लाइमेट। मनुष्य के स्वास्थ्य, निवास तथा क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु का महत्व सर्वोपरि है। तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा, प्रचलित पौने तथा परिवर्तता वेरिएबिलिटी जलवायु के प्रमुख घटक हैं, जो मानवीय क्रियाशीलता को नियंत्रित करते हैं। स्वास्थ्यवर्धक जलवायु मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हटिंगटन ने मानसिक कार्य के लिए 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस और शारीरिक श्रम के लिए 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान को सर्वोत्तम बताया है। शीतोष्ण जलवायु मानव स्वास्थ्य तथा आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसी प्रकार पर्याप्त वर्षा युक्त मानसूनी जलवायु भी जनसंख्या को सदैव आकर्षित करती है। संसार की सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण मानसून एशिया के देशों चीन, जापान, वियतनाम, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में है। मानसूनी प्रदेश के मैदानी भागों में जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव है, क्योंकि वहां अपेक्षाकृत कम परिश्रम से ही वर्ष में कम 2 फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं, जिससे वहां खाद्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धि बनी रहती है। शीतोष्ण जलवायु वाले पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा उत्तरीय अमेरिका के पूर्वी तटीय भागों में भी बृहद मानव समूहों का निवास है। सामान्यतः 4 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मानवीय निवास के लिए अनुकूल होता है। अत्यधिक शीतल और अत्यधिक गर्म प्रदेश मनुष्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। अति न्यून तापमान और शीत और सदैव हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड का लगभग 150 लाख किमी स्क्वायर वर्ग क्षेत्र निर्जन पड़ा हुआ है। संपूर्ण टुंड्रा प्रदेश अत्यधिक ठंडक के कारण शीत मरुस्थल के रूप में है, जहां अस्थायी मानव निवास का लगभग अभाव है। इस प्रकार अत्याधुनिक गर्म जलवायु में भी मानव बसाव के लिए प्रतिकूल होती है। तापमान और आर्द्रता के सम्मिलित प्रभाव से ही किसी प्रदेश की वनस्पति के जीव मंडल का निर्धारण होता है। अधिक आर्द्रता और अधिक शुष्कता दोनों ही कृषि उत्पादनों को सीमित कर देती है, जिसका मानव बसाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधिक उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले भूमध्य रेखीय प्रदेशों कांगो बेसिन अमेजन बेसिन में घने जंगल मिलते हैं और वर्ष भर उमस पूर्ण वातावरण रहता है, जिसके कारण वहां जनसंख्या का निवास अत्यल्प है। इसी प्रकार अत्यधिक शुष्कता के कारण अफ्रीका में सहारा तथा कालाहारी मरुस्थल एशिया में अरब थार एवं गोबी मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका में अटकामा मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल भाग लगभग निर्जन है, जहां जनसंख्या का घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं है। वर्षा के वितरण और जनसंख्या के घनत्व में सीधा संबंध पाया जाता है। जनसंख्या का घनत्व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर सामान्यतः घटता जाता है। यदि हम संपूर्ण एशिया अथवा केवल भारत के जनसंख्या वितरण पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि जनसंख्या की सर्वाधिक सघनता अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में है और न्यूनतम सघनता उन क्षेत्रों में है जहां वर्षा बहुत कम होती है। दूसरा, भूविन्यासी या स्थलाकृति टोपोग्राफी। किसी भूक्षेत्र में जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर वहां की स्थलाकृति का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे अधिक जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है, पठारी भागों में उससे कम और पहाड़ी भागों में सबसे कम पाई जाती है। समतल होने के कारण मैदानों में कृषि के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होती है और साथ ही वहां यातायात, सिंचाई, व्यापार आदि की सुविधाएं भी अधिक सुलभ होती हैं। यही कारण है कि विश्व के विभिन्न भागों में नदियों द्वारा निर्मित सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान, पाकिस्तान में सिंधु नदी का मैदान इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन की अधिकांश जनसंख्या इसके पूर्वी भाग में वांगवो, यांग टिसिक्यांग और टिसिक्यांग नदियों के मैदानों में ही संकेंद्रित है। पूर्वी भाग में जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, जबकि पश्चिमी पहाड़ी तथा पठारी भागों में जनसंख्या अति अल्प है। इसी प्रकार यूरोप में राइन, डेन्यूब, सीन, वोल्गा आदि नदियों के मैदानों और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी का मैदान सघन रूप से आबाद है। इसके विपरीत पहाड़ी प्रदेश ऊंचे नीचे और अत्यधिक विषम होने के कारण खेती करने, बस्तियां बनाने, यातायात आदि की दृष्टि से सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। यही कारण है कि विश्व के सभी ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में प्रायः जनभाव है। पर्वतीय क्षेत्रों के केवल उसी भाग में मानव निवास पाते हैं जहाँ लघु घाटियाँ स्थित होती हैं अथवा जहाँ कोई बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाया जाता है। राकी पर्वत और यूराल पर्वत में जहाँ उपयोगी खनिज पदार्थ मिलते हैं, खनिज स्रोत के निकट अधिवासों का विकास हुआ है। तीसरा, मिट्टी, सॉयल। किसी भी प्रदेश में उपजाऊ मिट्टी की उपस्थिति मानव निवास को सदैव आकर्षित करती रही है। वास्तव में मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का ही इतिहास है। कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति के शिक्षा का आरंभ उस मिट्टी से ही होता है जहां वह रहता है। मिट्टी वनस्पति का आधार है, क्योंकि सभी प्रकार के पेड़ पौधे मिट्टी में ही उगते बढ़ते हैं। अतः उनके विकास के लिए उर्वरक तथा उपयोगी मिट्टी अनिवार्य होती है। मनुष्य सहित सभी प्रकार के शाकाहारी प्राणियों का भोजन अनाज तथा वनस्पतियों के रूप में मिट्टी से ही प्राप्त होता है। मांसाहारी जीव जिन प्राणियों पर निर्भर होते हैं, सामान्यतः वे भी मिट्टी में उगने वाले वनस्पतियों पर ही पलते हैं। इस प्रकार शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के प्राणियों और मनुष्यों का भोजन मिट्टी से प्राप्त होता है। संसार के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली मिट्टियों के भौतिक तथा रासायनिक संगठन में भी अधिक भिन्नता पाई जाती है। रासायनिक तत्वों के समावेश से कुछ मिट्टियां अधिक उपजाऊ होती हैं, जैसे लावा द्वारा निर्मित काली मिट्टी, नदियों द्वारा बनाई गई जलोढ़ मिट्टी आदि। विश्व के विभिन्न नदी घाटियों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी के कारण वहां कृषि का विकास अधिक हुआ है। अधिक कृषि उत्पादन क्षमता विद्यमान होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। यदि हम भारत का ही उदाहरण ले तो देखते हैं कि उर्वरक जलोढ़ मिट्टी वाले उत्तरी मैदान में जनसंख्या अधिक सघन है, जबकि दक्षिणी पठार के आंतरिक भाग में कम उपजाऊ लाल मिट्टी, लाल पीली एवं लैटराइट मिट्टियों वाले क्षेत्रों में जनसंख्या काफी विरल है। यद्यपि औद्योगिक और तकनीकी विकास से पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है, किंतु आज भी संसार की अधिक से अधिक जनसंख्या के जीविकोपार्जन का आधार कृषि है, जो पूर्णतः मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर है। यही कारण है कि संसार के बड़े बड़े जनसमूह उपजाऊ मिट्टी वाले भागों में ही मिलते हैं। चौथा, खनिज पदार्थ, मिनरल्स। औद्योगिक क्रांति के पश्चात खनिज संसाधनों की उपलब्धि ने जनसंख्या वितरण को काफी प्रभावित किया है। लोहा, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज हैं, जिनके प्रयोग से अन्यान्य उपयोगी वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। सोना, चांदी, हीरा, प्लैटिनम आदि बहुमूल्य खनिज हैं, जो उपयोगी मात्रा में विश्व के कुछ सीमित भागों में ही पाए जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम आदि शक्ति के प्रमुख संसाधन हैं, जिनके प्रयोग से आधुनिक कारखाने तथा परिवहन के साधनों को संचालित किया जाता है। यूरोप में 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य कोयला पेटी स्थित है, जिसका विस्तार पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन से लेकर पूर्व में रशिया तक है। इस पेटी में लोहा अयस्क भी काफ़ी मात्रा में मिलता है, जिससे यहाँ लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। इसके साथ ही ताबा, जस्ता तथा खनिजों पर आधारित उद्योग भी विकसित हैं। इसी कारण से उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देशों में जनसंख्या अधिक सघन है। पूर्वी यूरोप के जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार हैं, वहाँ भी जनसंख्या अधिक अपेक्षाकृत अधिक है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के शुष्क भागों में जहाँ पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं, मानव निवास के लिए पर्यावरणीय दशाएं प्रतिकूल होते हुए भी पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संयुक्त अरब गणराज्य, कुवैत, ईरान, इराक आदि देश इसके उदाहरण हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल मरुस्थल में कालगुरली एवं कुलगाड़ी की विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने हैं। इनके निकट नगरों का विकास हुआ है, जहां लगभग 1000 किमी दूर पूर्वी भागों से पाइप द्वारा पीने का पानी पहुंचाया जाता है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जहां जनसंख्या के निवास का कारण वहां पाए जाने वाले खनिज भंडार ही है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी जहां महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होते हैं, जनसंख्या का उल्लेखनीय बसाव मिलता है। पांचवा, जलाशय, वाटर बॉडीज। जल मनुष्य की एक जैविक आवश्यकता है, जिसके अभाव में मानव जीवन संभव नहीं है। अतः मनुष्यों का निवास वहीं हो सकता है जहां पानी पीने के लिए कोई जल स्रोत उपलब्ध हो। पीने के साथ ही घरेलू कार्यों, औद्योगिक कार्यों तथा सिंचाई आदि के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जलापूर्ति की सुविधा वाले क्षेत्र में जनसंख्या की सघनता पाई जाती है। प्राचीन काल में जब नदियां यातायात की प्रमुख साधन थी, महत्वपूर्ण नगरों का विकास अधिकांशतः नदियों के किनारे हुआ था। आधुनिक काल में विश्व व्यापार के दृष्टिकोण से समुद्री मार्ग का महत्व सर्वाधिक है। यही कारण है कि संसार के बड़े बड़े नगर समुद्र तटों पर स्थित हैं और महत्वपूर्ण समुद्र पत्तनों के रूप में विकसित हुए हैं। न्यूयॉर्क, न्यू ऑर्लियंस, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, लंदन, टोक्यो, सिंगापुर, शंघाई, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आदि इसके उदाहरण हैं। शुष्क मरुस्थलों में जनसंख्या का निवास केवल उन्हीं क्षेत्रों में देखा जा सकता है जहां कोई जलाशय विद्यमान है। जलाशय के चारों ओर ही हरियाली तथा पेड़ पौधे पाए जाते हैं और मनुष्य का एक समूह तब तक वहां निवास करता है जब तक जलाशय में जल उपलब्ध रहता है। इस प्रकार पहाड़ियों में लोग किसी प्राकृतिक जल स्रोत जैसे झील या झरना के पास ही बस्तियां स्थापित करते हैं। शुष्क, अर्धशुष्क तथा अनिश्चित एवं अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में जलाशयों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इस प्रकार जनसंख्या के वितरण तथा उसकी सघनता पर जलाशय और जलापूर्ति का महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। छठा, स्थिति तथा अभिगम्यता, लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। स्थल तथा सागर के संदर्भ में किसी प्रदेश की स्थिति कई प्रकार की हो सकती है, जैसे मध्य प्रदेशी, महाद्वीपीय, द्वीपीय, सागर तटीय, अंतर पर्वतीय, गिरी दीप आदि, इसे प्राकृतिक स्थिति कहते हैं। सापेक्ष स्थिति का अभिप्राय किसी स्थान या क्षेत्र की अभिगम्यता तथा पारस्परिक स्थानिक स्थिति से है। सापेक्ष स्थिति के प्रमुख प्रकार हैं केंद्रीय स्थिति, परिधीय स्थिति, संलग्न स्थिति, सामरिक स्थिति आदि। किसी प्रदेश की स्थिति और उसकी अभिगम्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। किसी प्रदेश में आवागमन की सुविधा जितनी ही अधिक होगी, वह प्रदेश जनसंख्या को उतना ही अधिक आकर्षित करेगा। समतल मैदानी भाग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, नहर आदि के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके विपरीत पहाड़ी भाग ऊंचे नीचे तथा दुर्गम होते हैं और वहाँ किसी भी स्थलीय यातायात के साधन का विकास करना अत्यंत खर्चीला और कठिन होता है। जल यातायात के लिए नौगम्य नदियों तथा समुद्रों का तटवर्ती भाग अधिक उपयुक्त होता है। इन्हीं कारणों से जनसंख्या की सघनता सागर, झील या नदी के तटीय भागों में और आंतरिक समतल मैदानों में अधिक पाई जाती है। मुख्य स्थल के निकट स्थित सागरी द्वीप भी मानव निवास को आकर्षित करते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह, जापान, इंडोनेशिया आदि इसके उदाहरण हैं। वर्तमान काल में विश्व व्यापार के महत्व में होने वाली निरंतर वृद्धि के फलस्वरूप सागर तटीय क्षेत्रों तथा समुद्र पत्तनों के पृष्ठ प्रदेशों में जनसंख्या निवास के लिए आकर्षण बढ़ता जा रहा है। मुख्य समुद्री मार्गों पर स्थित कुछ स्थल सामरिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे स्थलों पर नगर विकसित हो जाते हैं जिनका सामरिक और व्यापारिक महत्व अधिक होता है। सिंगापुर, जिब्राल्टर, अदन, पनामा आदि इसके उदाहरण हैं।